धौला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 6 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोहे सौवसाहूणम् सिद्धमला विशुद्ध बुद्धिये लद्ध सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु भड़ारया सवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें चौथा खंड है वेदना नाम का और उसमें यह कृति अनियोग द्वार चल रहा है अपना। नववी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 38 पर हम आ गए, 38। हमने कल 14 नंबर की वो गाथा और उसका अर्थ भी देखा था। यहाँ जो द्रव्य संबंधी कुछ विकल्प बताए थे कल, यानी हम यहाँ क्षेत्र और काल की चर्चा कर रहे थे और क्षेत्र और काल की चर्चा में उन्होंने बीच वाले द्रव्य के कुछ विकल्प बताए हैं। ये द्रव्य के विकल्प थोड़े हम जीवकांड में से देखते हैं। यहाँ पर 537 क्या यहाँ जो पेज नंबर लिखे हैं वो पहले ढूंढारी वाले हैं ना? द्रव्य के कुछ भेद देखना है हमको। गाथा का नंबर नहीं लिखा। ₹523 पर क्षेत्र की अपेक्षा बात। अच्छा, गाथा 395-96 है। हाँ, देशावधि मध्यम भेदों में बराबर 526 है, यानी गाथा 395-96। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यानी मध्यम कुछ भेद बताए हैं। 396 की नीचे की टीका, पेज नंबर 526, जीवकांड, हिंदी। देशावधि के मध्यम भेदों में से जिस भेद में, अब ये द्रव्य संबंधी कुछ विकल्प बता रहे, देशावधि ज्ञान विश्रसोपचय सहित तेजस शरीर रूप स्कंद को जानता है। पहले तो जगन्य में जगन्य हमने देखा था, अभी यहाँ बढ़ते हुए की बात है ना। पहला जगन्य में हमने औदारिक शरीर का संचय प्लस उसका विश्रसोपचय डिवाइडेड बाय लोक देखा था, इतने सूक्ष्म स्कंद तक को जानता है। अभी और आगे वाले जो अवधि ज्ञान पावरफुल है वो और सूक्ष्म स्कंद तक को जानेंगे, तो उससे भी ये देशावधि का यानी जो विश्रसोपचय सहित वाला तेजस शरीर रूप स्कंद वो उससे सूक्ष्म होगा। पुनश्च उसी क्रम से जिस भेद में विश्रसोपचय सहित कार्मन शरीर स्कंद को जानता है, जिस भेद में विश्रसोपचय रहित केवल तेजस वर्गणा को जानता है, जिसमें विश्रसोपचय रहित केवल भाषा वर्गणा को जानता है, विश्रसोपचय रहित केवल मर्म वर्गणा को जानता है, इन पांच स्थानों में क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र जानना, यानी वो कितने द्रव्य की अपेक्षा भेद हुए होंगे ये समझ सकते, और काल असंख्यात वर्ष मात्र जानना। और हमने आवली के असंख्यात विभाग से और घनांगुल के असंख्यात विभाग से शुरू किया था, यानी वो इतना बड़ा है तब तक, यानी विसरसोपचय रहित मनोवर्गणा कितनी सूक्ष्म होगी। यानी यहाँ तो असंख्यात वर्ष कहेंगे और असंख्यात द्वीप समुद्र कहेंगे, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो द्वीप और समुद्रों की संख्या भी असंख्यात गुणा होगी और काल भी असंख्यात गुणा हो जाएगी। उसके बाद 397 की टीका देखो अभी, उसके पश्चात उस मनोवर्गणा को ध्रुवार का भाग दीजिए, ऐसे ही भाग देते देते, यानी मनोवर्गणा वाला वो पांचवें नंबर पर देखा था ना, विसरसोपचय रहित कारमाण का समय प्रबद्ध रूप द्रव्य होता है, इसको भी ध्रुवार का भाग दीजिए, ऐसे ध्रुवार का भाग जब तक सर्वावधि ज्ञान हो वहां तक जानना, यानी वहां तो जाके एक परमाणु का प्रमाण आता है, एक परमाणु तक जानता है ऐसा। यहां तो कारमाण का समय प्रबद्ध लिया, विसरसोपचय रहित समय प्रबद्ध लिया था, और देशावधि का द्विचरम भेद है वो कारमाण वर्गणा रूप द्रव्य लेना, वहां कारमाण वर्गणा लेना, और यहाँ समय प्रबद्ध में तो अनंत कारमाण वर्गणाएं होती है, और यहाँ केवल एक कारमाण वर्गणा लेना, ये द्रव्य की अपेक्षा कुछ भेद हमने देखे थे। इसकी चर्चा वैसे कल ही करनी थी मगर अपना समय हो गया था, क्योंकि उन्होंने प्रश्न और समाधान किसके लिए पूछा था, यानी कारमाण द्रव्य को ही मनोद्रव्य वर्गणा द्वारा क्यों नहीं खंडित करते, तो ये ऐसे अलग अलग विकल्प होते हैं उसकी बात यहाँ की। अब आगे बढ़ते हम, 38 पृष्ठ है दूसरा पैराग्राफ, इस सूत्र रूप गाथा के साथ विरोध होगा, शंकाकार ने जो पूछा था वो अन्य भागार, तो कहते वो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कहीं औदारिक शरीर, कहीं तेजस शरीर, कहीं कारमण शरीर, कहीं तेजस द्रव्य, कहीं भाषा द्रव्य, कहीं मन द्रव्य और कहीं कारमाण द्रव्य देना चाहिए, यानी किसको भाग देना वो अलग अलग जगह अलग अलग, वो कौन से स्कंद तो जानता है उसकी बात अलग अलग होती है। शेष पूर्व के समान कहना चाहिए, पूर्व के समान असंख्यात द्रव्य और भाव के विकल्पों के बीच जाने पर जब जघन्य अवघिनी क्षेत्र को आवली के असंख्यात विभाग से गुणा किया जाता है तब क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है। यानी क्या कहना चाहते हैं, द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात विकल्प होते हैं तब जाके क्षेत्र की अपेक्षा एक प्रदेश बढ़ता है, ये कहना चाहते हैं। इसी प्रकार असंख्यात क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर जब जघन्य काल को आवली के असंख्यात विभाग से गुणित किया जाता है तब काल का द्वितीय विकल्प होता है। इस प्रकार देशावधि के उत्कृष्ट विकल्प तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार कितने आचार्य देशावधि का प्ररूपण करते हैं परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम पूछते हैं कि पूर्व व्याख्यान में कहे हुए अध्वान के सदृश ही इस व्याख्यान का अध्वान है अथवा विसदृश। उक्त दो पक्षों में समान पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर क्षेत्र और काल को असंख्यात लोप पने का प्रसंग होगा। वहां उन्होंने क्या कहा था, डिफरेंस क्या था, हमने देखा था पहला जो हमने अभी तक कथन देखा है कि द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात विकल्प होने पर क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। यहाँ क्या कहा उन्होंने कि द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात विकल्प बीत जाने पर जघन्य अवधि क्षेत्रों का आवली के असंख्यात विभाग से गुणा किया, वह एक प्रदेश की वृद्धि नहीं बताई। जघन्य क्षेत्र घनांगुल का असंख्यात भाग था उसको असंख्यात गुणा किया, और काल को भी एक समय नहीं बढ़ाया है, काल को भी आवली के असंख्यात से भाग गुणा किया। अगर ऐसा करते जाए तो असंख्यात लोक हो जाएगा उसका, और पल्ले से भी ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी, ये कहना चाहते हैं। यानी काल भी देशावधि का ही उत्कृष्ट काल, असंख्यात लोक और क्षेत्र और काल की अपेक्षा दोनों ही असंख्यात लोक हो जाएगी, ये दोष होगा उसमें। वही इस प्रकार से यानी वो कैसे हो सकता है उसकी बात करें, क्योंकि वो एक प्रदेश की या एक समय की वृद्धि नहीं देखते हुए पेज नंबर 39 वो क्या मान रहे अन्य जो बता रहे अन्य विकल्प कि वो जघन्य जो काल और जघन्य क्षेत्र वो असंख्यात गुणा होता है, ऐसा उनकी मान्यता है। ऐसा अगर होते हैं तो उत्कृष्ट तक पहुँचते पहुँचते वो असंख्यात लोक हो जाएगा। वो कैसे तो वो बता रहे हैं आवली के असंख्यात वे भाग के चाहिए, हाँ आवली के असंख्यात वे भाग के अर्धच्छेदों से लोक के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करके प्राप्त राशि का विरलन कर प्रत्येक रूप के प्रति गुणकार भूत आवली का असंख्यातवा भाग देना चाहिए। विरलन मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर अवधि का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण होता है, क्योंकि विरलन मात्र आवली के असंख्यात वे भागों को परस्पर गुणित करने पर लोक की उत्पत्ति होती है। यहाँ पल्लपम के असंख्यात वे भाग अध्वान में ही अवधि क्षेत्र असंख्यात लोक मात्र हो गया, यानी थोड़े से काल में ही वो तो असंख्यात लोक हो गया। हाँ देखो यहाँ क्या कहते हैं, आवली के असंख्यात वे भाग के अर्धच्छेदों से, हमें किसी संख्या का गुणकार या भागहार करना है तो उसके अर्धच्छेदों का भी भागहार करके बता सकते हैं। जैसे हमको 256 से 256 को 8 से भाग देना है मान लेते हैं, तो 256 के अर्धच्छेद कितने होते मालूम है? 4 के अर्धच्छेद 2, 16 के 4, फिर 16 का वर्ग 256, वो 4 दुनी 8 होते, इसके अर्धच्छेद 8 हुए और 8 के अर्धच्छेद 3 हुए। अब यहाँ अन्य संख्या लेते हैं, अभी हम यहाँ 4 अगर लेते तो इसके अर्धच्छेद 2 हो जाएंगे। अर्धच्छेद को अर्धच्छेद से भाग देना है, बजावा की नहीं करना, वो नहीं निकालना है हमको। देखो क्या कहा है यहाँ पर, आवली के असंख्यात वे भाग के अर्धच्छेदों से लोक के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करके प्राप्त राशि का विरलन कर। अब ये प्राप्त राशि हमारी कितनी आई, यहाँ पर 4 आ गए, तो 4 का विरलन कर प्रत्येक रूप के प्रति गुणकार भूत आवली का असंख्यात भाग देना चाहिए। ये अर्धच्छेद थे, ये 4 अर्धच्छेद किसके हैं? 16 के हैं, तो गुण यहाँ हम 16-16 लिखेंगे। यही कहना चाहते, देखो अभी हमने छोटे गणित पर समझने की कोशिश की, लोक के अर्धच्छेद 256 अर्धच्छेद किसके हो गए, अभी पनट्टी के भी 16 होते हैं। अभी आगे कितने चले जाएंगे, वो बहुत बड़ी संख्या होगी वहां पर, ख्याल में आती है बात। अभी छोटी संख्या अगर लेके बताना है तो हम यहाँ छोटी संख्या जिसके अर्धच्छेद हमको मालूम है पनट्टी के 16 है, तो ये अर्धच्छेद को अर्धच्छेद से भाग दिया, नहीं ये जिसके अर्धच्छेद है 16 और ये 4 से भाग दिया, नहीं वहाँ तो ओरिजिन संख्या ली थी हमने, सॉरी नहीं उसमें वो 256 में घटित हो जाएगा, मैं बताती हूँ जरा। हमने 256 लोक को माना है वहाँ, अभी पहला गणित, और आवली के लिए हमने 4 माना है। अब इसके अर्धच्छेदों का भाग देना, इसके अर्धच्छेद होते हैं 8, 256 के 8, 4 के है 2, उसका भागहार हुआ 4, अभी चार, एक दो तीन चार लिखना, और ये अवली अवली का माप हमने चार माना है, तो चार चार लिखना, 256 आते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, विरलन मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर, फिर से, अवली के असंख्यात भाग के अर्धच्छेदों से लोक के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करके प्राप्त राशि का विरलन कर प्रत्येक रूप के प्रति गुणकारभूत अवली का असंख्यात भाग देना चाहिए। विरलन मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीच जाने पर, अवधि का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण होता है, विरलन मात्र क्षेत्र विकल्प में पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, क्योंकि हर विकल्प में अवली का असंख्यात भाग गुणा हो गया। समझ में आई? ये पहला विकल्प यहाँ लिखेंगे, फिर चार गुणा और चार गुणा और चार गुणा और चार गुणा, यानी ओरिजिनल यहाँ जो कोई विकल्प रखेंगे उसको अवली के असंख्यात भाग गुणा 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 होता गया। तो वही लोक के, क्योंकि ओरिजिनल भी यहाँ कुछ है ना, इसका प्रमाण यहाँ 256 आता है, पर वो 256 गुणा पहली वाली जो संख्या वो असंख्यात लोक हो जाएगी, यानी 256 से बड़ी हो जाएगी, यानी इतने गुणा होना चाहिए। जघन्य, जघन्य तो यहाँ रखा और जघन्य को इससे गुणा किया, तो ये लोक से भी यानी असंख्यात लोक हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि विरलन मात्र अवली के असंख्यात वे भागों को परस्पर गुणित करने पर लोक की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हमने देखा था ना, विरलन मात्र जो हमने ये गणित देखा है, चार बार चार लिखने से 256 ही होते हैं, लोक ही उत्पन्न होता है। विरलन मात्र जो भेद है यानी चार है, उतने बार अगर हम अवली का असंख्यात भाग लेते हैं तो लोक की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हमने लेते समय ही उसके अर्धच्छेदों को इसके अर्धच्छेदों से भाग देके उसका विरलन किया था, यानी इतने ही विकल्प हुए तो लोक तक पहुंच गई संख्या, और जघन्य को उससे गुणा करना है। और यहाँ पल्लोपम के असंख्यात वे भाग अध्वान में ही अवधि क्षेत्र असंख्यात लोक मात्र हो गया, इससे ऊपर जाने पर स्वयमेव क्षेत्र को असंख्यात लोकपणे का प्रसंग आवेगा, और यह इष्ट नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र लोक मात्र है ऐसा स्वीकार किया गया। यानी हर बार क्षेत्र का विकल्प असंख्यात गुणा नहीं होता है, वो एक एक प्रदेश से भी बढ़ते हुए विकल्प पाए जाते। इसी प्रकार काल के भी असंख्यात लोकपने के प्रसंग की प्ररूपणा करना चाहिए, यानी काल भी वो अवली के असंख्यात पे भाग गुणा अगर बढ़ता जाएगा, एक समय से उन्होंने बढ़ना नहीं माना असंख्यात गुणा, तो वो भी उत्कृष्ट तो पल्ले में एक समय कम था, वो असंख्यात लोक हो जाएगा, और देशावधि का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ऐसा अभिष्ट नहीं है, क्योंकि आचार्य परंपरागत उपदेश से देशावधि का उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्ले प्रमाण सिद्ध है। द्वितीय पक्ष भी नहीं बनता, दो उन्होंने बताए थे पक्ष, कि नीचे बताया था ना 38 पेज पर लास्ट पे लास्ट लाइन थे कि व्याख्यान में कहे हुए अध्वान के सदृश ही इस व्याख्यान का अध्वान है या विसदृश, यानी पहला जो व्याख्यान है उसके समान ही है कि दूसरा नहीं है, तो कहते तो पूर्वाध्वान से अधिक अध्वान स्वीकार करने पर पूर्वोक्त दोष का प्रसंग आवेगा, यानी वो कथन और ये कथन मिलता नहीं है। यदि पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों को स्वीकार करे तो वह भी नहीं बनता, यानी अगर क्षेत्र के विकल्प कितने होते हैं तो पल्ले के असंख्यात वे भाग ऐसा अगर कोई कहता है तो वो भी नहीं बनता, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर देशावधि के असंख्यात लोक मात्र क्षोभषम विकल्पों के अभाव का प्रसंग होगा। देशावधि के विकल्प कितने तो असंख्यात लोक मात्र है, क्योंकि उसके उतने ज्ञानावरण के भेद हो गए, तथा काल के अवली के असंख्यात वे भागत्व का प्रसंग भी होगा, यानी काल के विकल्प अवली के असंख्यात वे भाग मात्र हो गए। दूसरी बात यह है, क्षेत्र और काल के क्षोभषम असंख्यात गुणित क्रम से देशावधि में अवस्थित नहीं है, यानी अभी हमने देखा था क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा असंख्यात गुणित क्रम से नहीं होते, वो एक प्रदेश की वृद्धि या एक समय की वृद्धि, इस तरह से वृद्धि होती है उसके अंदर। क्योंकि अब 15 नंबर ऊपर है ना, उसको पढ़ेंगे। अंगुल मावली आए भागम संखे जदो विसंखे चा, अंगुल मावली अंतो आवलियम चांगुल पुदत्तम। यही गाथा 5 हमने पढ़ी थी। निकालो पेज नंबर 24। इन्हें पहला कांडक का जगन ने उत्कृष्ट बताया, दूसरा और तीसरा कांडक भी बताया था। यही बात यहाँ फिरते देखो। अभी हम 40 नंबर पेज पर देखते हैं। प्रथम कांडक में जघन्य देशावधि का क्षेत्र, अंगुल का संख्यात्वा भाग। अंगुल कहने से घनांगुल है, और जघन्य काल आवली का असंख्यात्वा भाग है। इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र और काल क्रमशः अंगुल और आवली के संख्यात्व भाग प्रमाण है। ये भी वहां बताया था, घनांगुल का संख्यात्व भाग और आवली का संख्यात्व भाग। यहाँ द्वितीय कांडक की बात लिखना रह गई है, जो हम वहां के आधार से लिख सकते हैं कि द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण उसमें लिखा हुआ है क्या 40 पेज पर? डायरेक्ट तृतीय की बात है ना, तो वहां द्वितीय की बात लिखना रह गई है, वो लिखो आप। एक पूरा बड़ा वाक्य है, वहां इसे ऐड करना है आपको। जो हमने 24 पेज पर लिखा है वही यहाँ ऐड करना है कि द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण, जो मूल गाथा में है ना, अंगुलम और आवलियंतो, उसका ट्रांसलेशन क्या है? द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण। और काल कुछ कम आवली प्रमाण है। फिर से बताती हूं, जो वहां का ही वाक्य यहां ऐड करना है कि द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम आवली प्रमाण है। आगे का तो लिखा ही यहां पर, तृतीय कांडक में क्षेत्र अंगुल पृथक्त्व और काल आवली प्रमाण है, इत्यादि वर्गणा के गाथा सूत्रों के साथ विरोध होगा। यानी अन्य जो गुणित प्रमाण में अगर मानते हैं तो वो बात सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि वो सारे कांडक और उनका प्रमाण सुनिश्चित है, वो सूत्रों की बात है, सूत्रों में आया हुआ है। इस प्रकार अवधि ज्ञान की प्ररूपणा की गई। अवधि ज्ञान स्वरूप जो जिन, वे अवधि जिन है। यहां तो जिन कहने से एक देश जिन को भी जिन कहा था, मुनियों को भी, उसकी अपेक्षा यहां अवधि जिन कहा है। अब शंकाकार पूछते हैं, गुण स्वरूप अवधि ज्ञान के गुणीपना कैसे युक्त है? क्या कहे, अवधि ज्ञान ये गुण है और उनको जिनों को नमस्कार करते, वो तो गुणी है, इसको धारण करने वाले है, वो गुण को धारण करने वाले गुणी। यहाँ आप कहेंगे अवधि ज्ञान गुण कैसा है, तो पर्याय को भी गुण कहने की पद्धति है। अभी हमारा पंचास्तिका नियम सार चल रहा है, वो दोनों जगह पर्याय को गुण 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 करके पुकारते। केवल ज्ञान को तो शुद्ध गुण कहा और मति शुद्ध ज्ञान को विभाव गुण कहा, ये बात चल रही है बारंबार। तो वहां तो ये गुणों के पर्याय को भी गुण कहने की पद्धति है। यही कह रहे हैं, ये अवधि ज्ञान का आपने स्वरूप बताया और अभी जिन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो अवधि ज्ञान को धारण करने वाले वो गुणी और अवधि ज्ञान वो गुण, यही पूछ रहे। तो गुण स्वरूप अवधि ज्ञान के गुणीपना कैसे युक्त है, उसको जिन क्यों कह रहे हो? समाधान, यह कोई दोष नहीं है। क्योंकि गुणी को छोड़कर गुणों का अभाव है। गुण तो गुणी के आधार से ही रहेंगे, केवल गुण तो नहीं रहेंगे, है ना? अर्थात गुण और गुणी में भेद न होने से अवधि ज्ञान स्वरूप जिन के कहने में कोई विरोध नहीं है, यानी अवधि ज्ञानी जिन, इस तरह से अवधि ज्ञान स्वरूप जिन, शंका, जिनों को अवधि से विशेषित किस लिए किया जाता है? समाधान, जो अवधि ज्ञान से रहित जिन है उनका निषेध करने के लिए जिनों को अवधि से विशेषित किया गया है। अब पूछते हैं वो अवधि जिन कौन है, उसका समाधान, रत्नत्रय सहित अवधि ज्ञानी अवधि जिन है। ऐसे अवधि जिनों को नमः अर्थात नमस्कार हो, यह अभिप्राय है। अब शंका पूछते, देखो 41 पेज पर, महाव्रतों से रहित दो रत्नों अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के धारक, यहाँ चारित्र को नहीं लिया, चारित्र संयम को कहते हैं और चौथे वाले असंयमी है और पांचवे वाले संयमासंयमी है, उनके संयम नहीं है, देश संयम है पर संयम नहीं है, तो उसको चारित्र नहीं ऐसा भी कहेंगे। ये सम्यक चारित्र सर्वथा नहीं ऐसा उसको में अर्थ नहीं लेना है, चारित्र होता ही नहीं, हम कहेंगे हाँ होता है क्योंकि स्वभाव चारित्र की पर्याय शुरू हुई, उसकी बात नहीं है। संयम किसको कहते हैं वो यहाँ नहीं है, वो तो सबको मान्य है ना, यही बता रहे। महाव्रतों से रहित, महाव्रत ने केवल बाह्य आचार को नहीं लेना है यहाँ पर, उनके अंतरंग जो वितरागता है उसके सहित की बात है। महाव्रतों से रहित दो रत्नों अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के धारक अवधि ज्ञानी तथा अवधि ज्ञान से रहित जीवों को भी क्यों नहीं नमस्कार किया जाता, ये प्रश्न है। यानी चौथे पांचवें गुणस्थान वालों को क्यों नहीं, या चौथे वाले को क्यों नहीं नमस्कार करते हैं, ये प्रश्न है। समाधान, अहंकार से महान जीवों में चरणाचार अर्थात सम्यक चारित्र रूप प्रवृत्ति कराने के लिए तथा प्रवृत्ति मार्ग विषयक भक्ति के प्रकाशनार्थ, श और न जुदा चाहिए, उन्हें नमस्कार नहीं किया जाता। क्या कहते हैं, यानी जिन्होंने में वो चरणाचार यानी मुनि योग्य आचार नहीं है और सम्यक चारित्र रूप प्रवृत्ति कराने के लिए और प्रवृत्ति मार्ग विषयक भक्ति के लिए, यानी जो प्रवृत्ति में है, यानी कौन, मुनिराज जो, उनकी प्रवृत्ति भी है ना बाह्य में, अंतरंग में तो है ही है, बहिरंग भी उनका ऐसा है, तो कहते उसमें भक्ति को प्रवर्तन कराने के लिए। इसका अर्थ क्या है, ये चौथे वाले की भक्ति नहीं हो सकती, निकला ना इसमें से अर्थ। हाँ, ये क्या कहते हैं, अहंकार से महान जीवों में चरणाचार अर्थात सम्यक चारित्र रूप प्रवृत्ति कराने के लिए, यानी भी चौथे वाले को ऐसी प्रवृत्ति नहीं है और प्रवृत्ति मार्ग विषय भक्ति के प्रकाशनार्थ, और भक्ति तो जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं उनकी भक्ति हो सकती है, इसलिए उन्हें नमस्कार नहीं किया जाता। यहाँ जब अवधिजिनानम अवधिजिनम उसका नाम बताया है तो मुनियों की बात है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी है जिनेन्द्र भगवान, और ये एक देश जिन जो संयमी है अवधि ज्ञान से सहित है, उनकी यहाँ बात हो रही है। लास्ट टाइम 41 पर लिया है। अन्य जो अवधि ज्ञानी है, चौथे गुणस्थान वाले देव है देवी है, उनकी भी पूजा नहीं होती है। पूजा नहीं हो, भक्ति नमस्कार। क्या नहीं, नहीं देखो आपका यही प्रश्न है, मुनिराज है वो चौथे गुणस्थान में है कि पांचवे में है कि छठे सातवें में, कैसे मालूम पड़ेगा आपको, नहीं मालूम पड़ेगा। परंतु आपको उनका बाह्य व्यवहार मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो क्या आगम से बिल्कुल यथार्थ है कि नहीं, कि थोड़ा भी उसमें कोई दोष है, उनका कथन कैसे होता है, आगम के अनुकूल है कि बस भक्ति करो, राग करो, पूजा करो, कल्याण होगा, ऐसा कथन आता है। तो उनके उपदेश के उपदेश सुनकर हम उनकी पहचान करा सकते हैं, यानी वो मिथ्या दृष्टि है कि केवल द्रव्य लिंगे ये भी जान सकते हैं, पर वो पहले में पहले द्रव्य लिंग भी सही है कि नहीं वो देखना है। भले द्रव्य लिंगी और मिथ्या दृष्टि है पर द्रव्य लिंग सच्चा है तो उनके भी वहाँ विनय होनी चाहिए। तो श्रावक का कर्तव्य है, सच्चा द्रव्य लिंग है तो उनकी भक्ति भी करेगा, वो उनको आहार दान भी देगा, वो सब करेगा, पर उनका गुणस्थान दूसरे को समझ में नहीं आ सकता, वो तो उनका तो व्यवहार ही देखा जाता है। यह लिखा है ना प्रवृत्ति मार्ग विषयक भक्ति का प्रकाशन, उनकी प्रवृत्ति तो देखने में आती है पर प्रवृत्ति में अभी जहाँ दोष चल रहा है वहाँ वो नमस्कार के योग्य भी नहीं है, ये भी समझना। अहंकार से महान इन्हें भी जो चौथे वाले वो अहंकार हो सकता है ना, इन्हें उसमें तो अभी वो तो इसमें नहीं लगा है ना, चरणाचार में चारित्र रूप प्रवृत्ति में नहीं लगा है, इसलिए उसको अहंकार से महान कह दिया। हाँ इस प्रकार देशावधि जनों को नमस्कार करके परमावधि जनों को नमस्कार करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। यह सूत्रों को बोल्ड में क्यों नहीं लिखा है, अभी तक तो सूत्रों को बोल्ड लिखते थे ना। नमो परमोहि जिनानम, परमावधि जिनों को नमस्कार हो। हमने देखा था देशावधि तो चौथे पांचवे छठे सातवें को भी हो सकता है ना, परमावधि और सर्वावधि तो चरम शरीरी मुनिराजों को ही होगा, ये नक्की है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं। देशावधि तो कभी भी हो सकता है किसी को, देशावधि तो देवनारकियों को भी है ना, चौथे वाले को है ना, परंतु यह परमावधि सर्वावधि मुनियों को होगा, वो भी उसी भव में मोक्ष जाने वाले को होगा और वो उससे गिरेगा नहीं। देशावधि तो छूट भी सकता है, परमावधि और सर्वावधि कभी छूटते नहीं, वो प्रतिपाती नहीं होते। परम शब्द का अर्थ ज्येष्ठ है, परम ऐसा जो अवधि वह परमावधि है, यानी जो देशावधि से वो श्रेष्ठ है, थोड़ा पूरा सबसे उत्कृष्ट है वो सर्वावधि। सर्वावधि का तो एक ही भेद, उसमें कोई नहीं, सबसे उत्तम वो एक ही भेद है, परमावधि में असंख्यात भेद है। देश ये असंख्यात है, देशावधि में भी देखे ना हमने, देशावधि में तो द्रव्य की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा सर्वाधिक भेद हो गए, क्षेत्र की अपेक्षा भेद कम हो गए और काल की अपेक्षा भी भेद कम देखे हमने, परंतु यहाँ परमावधि में वहां हमने क्या देखा, द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात भेद होने पर फिर क्षेत्र का दूसरा विकल्प, क्षेत्र के असंख्यात भेद होने पर फिर काल का एक विकल्प। परमावधि में क्या होता है, चारों को ही वृद्धि एक साथ हो जाएगी, पहले विकल्प से दूसरे विकल्प में द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चेंज हो जाएंगे, द्रव्य अधिक सूक्ष्म तक को जानेगा और क्षेत्र और काल बढ़ेगा। अभी ये बताएंगे यहाँ पर शंकाकार पूछते हैं इस अवधि ज्ञान के ज्येष्ठपना कैसे है। समाधान, चूंकि यह परमावधि ज्ञान देशावधि की अपेक्षा महाविषय वाला है, देशावधि के उत्कृष्ट देशावधि का विषय हमने देखा था लोक तक और काल में एक समय कम पल्य, इतने काल आगे पीछे का जानते हैं, तो इसका विषय अधिक है, बड़ा है। सोनबेन मुझे कहो, वो तो देशावधि लोक तक के सभी परमाणु उसके यथा योग्य स्कंदों को जानेगा, अब ये परमावधि जो पहला भेद भी है वो उससे असंख्यात गुणा क्षेत्र को जानेगा, यानी इसके आगे सारे असंख्यात लोग बढ़ते चले जाएंगे, तो असंख्यात लोक में कहाँ पुद्गल है, वो कैसे जानेंगे, यहाँ बताए ना महाविषय वाला है तो क्षेत्र का भी विषय, अधिक क्षेत्र तक जानेंगे तो अधिक क्षेत्र में पुद्गल कहाँ है, तो ऐसा क्यों कहा अधिक क्षेत्र में जानेंगे, है ना, पर लोक के बाहर तो नहीं है और इनके क्षेत्र की मर्यादा कहाँ है, ऐसे एक लोग नहीं असंख्यात लोक तक जान सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, इतना होता तो भी जानते, ये इतना सामर्थ्य है। समझ में आई बात? जैसे केवल ज्ञानी के बारे में कहते हैं, ऐसे अनंतानंत लोकालोक होते तो भी जानते, प्रकट सामर्थ्य इतनी है। ये ऐसा ही यहाँ पर भी बरोबर ऐसा ऐसे प्रश्न आना चाहिए कि असंख्यात लोग कैसे कहा, वो प्रश्न शायद यहाँ पे उठाएंगे। जीवकांड में तो उठाया था टोरमल जी साहब ने, अब यहाँ क्या कहते देखेंगे। यह परमावधि ज्ञान देशावधि की अपेक्षा महाविषय वाला, इनका विषय बड़ा है। यहाँ तीन चार पॉइंट बताएं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, मनपर्य ज्ञान के समान संयत मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। मनपर्य ज्ञान भी संयमियों के ही होता है और ये भी संयमियों के ही उत्पन्न होता है। अपने उत्पन्न होने के भव में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, यानी जिस भव में जिसको परमावधि सर्वावधि वो तो उसी भव में मोक्ष जाने वाला है। और अप्रतिपाती है, अप्रतिपाती का अर्थ है ना चारित्र छूटता है ना सम्यक तो छूटता है, उसको अप्रतिपाती कहेंगे। अप्रतिपाती अर्थात सम्यक व चारित्र से च्युत होकर मिथ्यात्व एवं असंयम को प्राप्त होने वाला नहीं है, ये उसका अर्थ होता है। इसलिए उसके ज्येष्ठपना संभव है। ख्याल में आती है ना बात? परमावधि रूप ऐसे वे जिन परमावधि जिन हैं उनके लिए नमस्कार है। शंका, यदि देशावधि ज्ञान से परमावधि ज्ञान ज्येष्ठ है तो इसको ही पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि देशावधि से ही परमावधि के स्वरूप का ज्ञान होता है। क्योंकि देशावधि का उत्कृष्ट लिमिट बताया तो हम आगे देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य है, द्रव्य हमने कहाँ से सूक्ष्म तक जानता है, उसको एक बार ध्रुवार से भाग देंगे तो परमावधि का द्रव्य मिलेगा, जघन्य परमावधि का। समझ में? तो उसकी लिमिट बताइए, वो उसकी लिमिट को कंपेयर करेंगे तो इसका परमावधि का ज्ञान हो जाएगा। इसे देशावधि की बात पहले उठाई। तो कहते देशावधि से ही परमावधि के स्वरूप का ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता। इस बात के ज्ञापनार्थ ये बताने के लिए देशावधि को पूर्व में नमस्कार किया है, अथवा परमावधि के स्वरूप के जानने का निमित्त होने से परमावधि की अपेक्षा चूंकि देशावधि महान है अतः उसे पहले नमस्कार किया है। शंकाकार पूछते हैं, देशावधि से परमावधि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? समाधान, यहाँ सूत्र गाथा कहते हैं ऊपर 16 नंबर के। परमो हि असंख्य जानी लोगमेत्तानि समय कालो दु रुवगदलहि दौवम खेतोवम अगणि जीवेहि। परमावधि उत्कृष्ट से क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात लोकमात्र क्षेत्र को, काल की अपेक्षा असंख्यात लोकमात्र समय रूप काल को जानता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, जब क्षेत्र कहने से असंख्यात लोकमात्र क्षेत्र को तो डायरेक्ट कहाँ तक जानता है वो बात आती है, परंतु काल को भी असंख्यात लोग जब कहेंगे तो एक लोक में जितनी प्रदेश है उस संख्या को लोक कहते हैं, और ऐसे असंख्यात गुणा जो संख्या आ जाएगी उतने समय लेना है। आपको याद होगा ये अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र ऐसा हम कहते थे, इतने काल तक जीव आहार का आहार ही रहता है, ऐसा हमने आपको पहले अपने मार्गणाओं में सीखा था। यानी वो विग्रह गति में रुजुगति से गया, रुजुगति से ऐसा लंबे कितने काल तक, तो अंगुल का असंख्यात भाग, अंगुल के असंख्यात वे भाग में जितने प्रदेश है उसको समयों में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, असंख्याता संख्याता उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी होती है। तो अंगुल का असंख्यात भाग में इतने प्रदेश है, प्रदेश इतने सूक्ष्म है तो लोक में कितने हो गए, ख्याल में, और असंख्यात लोक में, और उसको अभी समयों में कन्वर्ट करो तो वो काल कितना बड़ा होगा, ये कहना चाहते हैं। काल को भी क्षेत्र की अपेक्षा काल को भी कहते हैं क्योंकि वो हमको संख्या गिननी है और संख्या में समयों को गिनना है, तो काल भी असंख्यात लोक मात्र है। यहाँ लिखा ना परमावधि उत्कृष्ट से क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात लोकमात्र क्षेत्र को और काल की अपेक्षा असंख्यात लोकमात्र समय रूप काल को जानता है। ऊपर बताया ना लोकमित्तानि समय कालो दो, वही शलाकाभूत क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीवों से परिच्छिन्न रूपगत द्रव्य को उत्कृष्ट से विषय करता है। अभी इसी का समझाने के लिए विशेषार्थ बताते हैं। परमावधि का विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, ये प्रदेशों की संख्या गिनी कहां तक जानते हैं, और उत्कृष्ट काल भी असंख्यात लोकमात्र है, वो समयों की बात है। उसी के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य को जानने के लिए यही प्रक्रिया है। तेज कायिक जीव की जघन्य उगाहना को, तेज कायिक नहीं अग्निकायिक, अग्निकायिक की जो जघन्य उगाहना है उसकी ही उत्कृष्ट अवगाहना में से घटाकर, अवगाहना के भेद हमने देखा था, पहला टेबल जो है पहला कोठा निवाते, तीसरे पॉइंट पर सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त अग्निकायिक की जघन्य अवगाहना थी, पांच छह सात, सातवें कोठे में वो पर्याप्त अग्निकायिक की बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना थी वहां पर। तो इसके बीच में एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए कितने भेद हो जाएंगे, क्योंकि कितनी बार असंख्यात गुना हुआ है, तो ये जो सारे भेद है। तो कहते हैं तेज कायिक जीव की जघन्य अवगाहना को उसकी ही उत्कृष्ट अवगाहना से में से घटाकर शेष में एक रूप मिला देने पर, हमें सभी भेद चाहिए तो उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, हमेशा मैं कहती हूँ ना 100 माइनस 5 प्लस 1, क्योंकि 5 को भी गिनना है और 100 को भी गिनना है, तो इतने वहाँ भेद होते हैं। वैसे यहाँ पर अग्निकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना माइनस जघन्य अवगाहना प्लस 1, एक रूप है ना, एक संख्या मिला देने पर जो प्राप्त हो उसे, यानी अवगाहना के जितने भेद है डिवाइडेड बाय तेज कायिक राशि से गुणा करने पर शलाका राशि उत्पन्न होती है, यानी अवगाहना के भेद मल्टीप्लाइड बाय अग्निकायिक जीवों की राशि। देखो तेज कायिक के अवगाहना के भेद बताएंगे इनटू तेज कायिक राशि, पूरे तेज कायिक राशि, तेज कायिक कहने से बादल सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त सब आ गए, गुणा करने पर शलाका राशि उत्पन्न होती। वो शलाका राशि से क्या करना वो बताएंगे। अब देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में, क्योंकि हमें वो भेद चाहिए ना परमावधि के भेद, क्योंकि उसका विषयभूत द्रव्य कैसा नहीं, अभी जो क्षेत्र के जितने विकल्प है उतने देश के भी विकल्प है, देश के द्रव्य के विकल्प है, तो हमने उत्कृष्ट देशावधि का द्रव्य कितना था, कारमान वर्गना को एक बार ध्रुवार से भाग दिया था, तो देशावधि उत्कृष्ट देशावधि का हमको द्रव्य का प्रमाण आया था। अब उसको ध्रुवार से भाग देते जाओ कितने बार, ये शला का बार, फिर से यहां पढ़ेंगे देखो। अब देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में मनोवर्गणा के अनंतवे भाग रूप ध्रुवहार का बार बार भाग देकर शलाका राशि में से एक एक कम करते जाना चाहिए। शलाका राशि का अर्थ है इतने परमावधि के भेद हो गए, पहले भेद के लिए हमने उत्कृष्ट देशावधि के द्रव्य को एक बार ध्रुवहार से भाग दिया, परमावधि के दूसरे भेद के लिए दो बार भाग दिया, फिर और उसको तीसरी बार भाग दिया, चौथी बार, कितने बार करना, इसको कहेंगे शलाका। ये शलाका यानी परमावधि के भेद कितने हैं, अग्निकायिकों के ने तेजोकायिकों के अवगाहना के भेद मल्टीप्लाइड बाय तेजकायिक की राशि। वो तेजकायिक की राशि भी इतनी बड़ी असंख्यात है, भले वो जीवों की संख्या कम है, फिर भी हमने देखा था जब हमने जीवकांड पढ़ा था वो शलाका त्रय छापित करना वगैरह वगैरह, पहली मूल में लोक प्रमाण संख्यात ली थी, फिर उसके एक बार वो सारा गुणित करना, लोक को लोक बार गुणित करो, फिर और ऐसे गुणा करते जाओ ना, और शलाका राशि में से एक एक कम करते, यानी अग्नि का एक कोम की जो राशि है वो भी बहुत बड़ी है, असंख्यात लोग उसकी संख्या है। समय अन्य कायिकों की अपेक्षा, हाँ वो भी बादर अग्नि कायिक की बात है, बादर अग्नि कायिक पर्याप्त जीव कम है। तो ये तेजो कायिक अवगाहना के भेद मल्टीप्लाइड बाय तेज कायिक राशि, यानी वो कितना बड़ा असंख्यात होगा, क्योंकि तेजो कायिक की राशि असंख्यात लोक है, वो असंख्यात लोक को भी इतने असंख्यात गुणा करना, इतने तो परमावधि के भेद हो गए, इतनी बार ध्रुवार से भाग देते जाना तो उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य का प्रमाण आएगा। देखो इस प्रकार शलाका राशि से समाप्त होने पर अंत में जो द्रव्य विकल्प प्राप्त होता है वह रूपगत है और वही परमावधि का उत्कृष्ट विषय है। देखो रूपगत क्यों कहा, पेज नंबर 44 पर लिखा है, पेज नंबर 44 पर देखो एक शंका पूछे ना, पहली शंका रूपगत विशेषण किस लिए दिया है, परमावधि का जो उत्कृष्ट भेद है जो कौन से स्कंध तक जानता है उसको रूपगत क्यों कहा। समाधान अरूपी द्रव्य का प्रतिषेध करने के लिए रूपगत विशेषण दिया है। उसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। यानी वो रूपी द्रव्य को ही जानता है ना, तो उसका तो सूक्ष्म 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 कह रहे हैं, परंतु तो अरूपी की बात नहीं, अवधि ज्ञान तो रूपी को ही जानता है, वो रूपगत शब्द आया है उसमें। तो अब इसको एक बार ध्रुवार से भाग देंगे ना तो एक परमाणु आएगा, यानी इसका प्रमाण ही ध्रुवार जितना है, ये कहना चाहते हैं। वही परमावधि का उत्कृष्ट विषय है, यही शलाका राशि परमावधि के विषयभूत क्षेत्र काल एवं भाव के विकल्पों के जानने में भी निमित्त है। इसका अर्थ ऐसा है जैसे देशावधि में द्रव्य के असंख्यात भेद होने पर क्षेत्र का दूसरा विकल्प होता था, ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ सभी एक पहला परमावधि का भेद है उसमें जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, दूसरे भेद में सभी चेंज हो जाएंगे, द्रव्य और सूक्ष्म की तरफ जाएगा, क्षेत्र काल और भाव तीनों ही बढ़ेंगे, ये उसका अर्थ होता है। जितने द्रव्य के भेद उतने क्षेत्र के, उतने काल के, उतने ही भाव के। ये देखो इस गाथा द्वारा परमावधि के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की प्ररूपना की गई है, वही इस प्रकार से परमावधि असंख्यात लोक मात्र अर्थात लोक प्रमाणों को प्राप्त करता है, जानता है, इससे क्षेत्र प्रमाण की प्ररूपना की है। ऊपर गाथा में आया था ना, समय ऐसा जो काल वह समय काल है। फिर शंकाकार पूछते यहाँ समय विशेषण किस लिए दिया है, समाधान द्रव्य काल का प्रतिषेध करने के लिए समय विशेषण दिया है। शंका द्रव्य काल का प्रतिषेध किस लिए किया जाता है, यहाँ एक वाक्य रहा है समाधान का, हमने डाला है ऊपर लिखा है ना, तेन इत्थ पोजन अभावादो, यहाँ ऐसा लिखना है समाधान लिख के एक डैश करो, एक वाक्य लिखना है बीच में, शंका पूछे ना अभी समाधान, वहां लिखो समाधान, शंका के नीचे कहाँ लिखा है, आपके लिख में लिखा है, देखो शंका के नीचे समाधान हमारे में नहीं है, आपके पास नया पुस्तक है क्या, हाँ तो वो तो उन्होंने सुधारा है ना, सुधार के, क्योंकि ये सारे हम सुधार के भेजे थे, क्योंकि उसका यहाँ प्रयोजन नहीं है, यहाँ प्रयोजन का अभाव है, एक ही बात है ऊपर लिखा ना, तेना इत्थ प्रयोजन अभावादो, उसका यहाँ ट्रांसलेशन करना रह गया था, समाधान करके डैश लिखना पुराने पुस्तकों में, और ऐसा लिखना क्योंकि उसका यहाँ प्रयोजन नहीं है या प्रयोजन का अभाव है, एक एक ही बात है। तो शब्द अपि शब्द के अर्थ में जानना चाहिए, अपि यानी भी, ऊपर लिखे ना समय कालो दू, अवधि का समय रूप काल भी असंख्यात लोक मात्र है, इससे परमावधि के उत्कृष्ट काल और भाव की प्ररूपणा की है। शंका, यह काल प्ररूपणा भले ही हो किंतु भाव प्ररूपणा नहीं हो सकती, क्योंकि काल और भाव की एकता का विरोध है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अतीत और अनागत पर्याय, अतीत अनागत काल है तथा वर्तमान पर्याय वर्तमान काल है, उन्हीं पर्यायों की ही भाव संज्ञा भी है, क्योंकि वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य भाव है ऐसा प्रयोग देखा जाता है। अतीत और अनागत काल से चूंकि भाव संज्ञा वाला वर्तमान काल काल स्वरूप से अभिन्न है, अतः काल और भाव की एकता में कोई विरोध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? भूतकाल का अर्थ है उसी को जो भूतकाल के पर्याय को ही जानना है ना, वो तो काल से ही संबंधित है, इसलिए काल में वो आ गया, ये कहना चाहते हैं। शंका, इस व्याख्यान से जघन्य परमावधि का काल नहीं सूचित किया गया है, वह कैसे जाना जाता है? समाधान, परमावधि का असंख्यात समय काल है, इस सूत्र से वह जाना जाता है। क्षेत्रोपम अग्नि जीव, क्षेत्रोपम क्षेत्र की उपमा दी है ना, क्षेत्रोपम ऐसे वे अग्नि जीव, क्षेत्रोपम अग्नि जीव है, उन शलाकाभूत क्षेत्रोपम अग्नि जीवों से जो पुद्गल द्रव्य सिद्ध है उसे परमावधि प्राप्त करता है अर्थात जानता है। क्षेत्र की उपमा देकर उनको समझाया, इसलिए उसको क्षेत्रोपम कहते हैं। शंका, रूपगत विशेषण किस लिए दिया है? अभी हमने पढ़ा था इसको, अरूपी द्रव्य का प्रतिषेध करने के लिए रूपगत विशेषण दिया है। फिर शंकाकार पूछते हैं, यदि इसके द्वारा केवल रूपी द्रव्य का ही ग्रहण किया जाता है तो फिर इससे अतीत अनागत और वर्तमान पर्यायों का ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वे रूपी नहीं है, रूपीपने का अभाव भी उनमें द्रव्यत्व के अभाव से है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वे भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, इसलिए उनमें कथनचित रूपी द्रव्यत्व सिद्ध हो जाता है। अभी अपना विषय चल रहा है ना, वो प्रवचन सार में कहाँ पर आता है, रूपी द्रव्य के गुण भी रूपी है, चेतन द्रव्य के गुण भी चेतन है, पर्याय भी वैसी होगी उसकी, इसलिए यहाँ कहते हैं वो पर्याय भी रूपी है। यह रूपगत शब्द चूंकि मध्य दीपक है, अभी बताया है पर वो सभी जगह लागू होता है, अतएव इसे अधस्तन और उपरिम अवधि ज्ञानों में सर्वत्र जोड़ लेना चाहिए, यानी देशावधि में भी जोड़ो परमावधि भी ले जोड़ो, सर्वत्र इसका रूपी ही है ना, सारा है रूपी को ही जानते हैं, वो सर्वत्र समझना चाहिए। इस व्याख्यान द्वारा द्रव्य प्ररूपणा की गई है, यानी कितने सूक्ष्म स्कंधों तक को जानता है वो बात यहाँ बतानी चाहिए, क्योंकि वो रूपी ही की बात है ना, रूपी द्रव्य को तो नहीं जानता, रूपी को ही तो जानता है। अब इस गाथा द्वारा सूचित अर्थ के निर्णयार्थ यह प्ररूपणा की जाती है, वह इस प्रकार है। उन्होंने बताया था ना कि अग्निकायिक जीवों के अवगाहना के जितने भेद है उसको अग्निकायिक जीवों के प्रमाण से गुणा करना चाहिए, ये इतने परमावधि के भेद होते हैं, उसी को समझा रहे हैं। सूक्ष्म तेजकायिक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात वे भाग है, हमने देखा था ना सबसे जघन्य अवगाहना वो सूक्ष्म निगोद की थी, उसको आवली के असंख्यात वे भाग गुणा करो तो सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त की थी, उसको आवली के असंख्या भाग से गुणा करो तो सूक्ष्म तेज का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगान आती। ये कोठा नंबर एक में तीसरे नंबर पर था। उससे असंख्यात गुणी बादर तेज का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना में से कम करके, बादर तेज का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, ये अभी हमने एक दो तीन चार पांच छह नंबर के कोठे में थी। हाँ, एक दो तीन चार पांच छठे में होगी, क्योंकि हमने देखा ना विशेष अधिक विशेष अधिक। जैसे अभी हमने नैगोद वायु का एक और तेज का एक देखा, चौथे कोठे में बादर अपर्याप्त की जघन्य थी, उससे सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट थोड़ी अधिक और उससे बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट विशेष अधिक। वो कोठे नंबर छह में देख लो, आप कंफर्म कर लो, 188 पेज था। इकतालीस नंबर पर ना, तेज पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, पेज नंबर 188 है। देखो यहाँ कोठे लिखे ना, ऊपर ऊपर जो ब्रैकेट में लिखे वो कोठों के नंबर है। एक नंबर के कोठों में तीसरे नंबर पर तेज लिखा है, मैंने तेज नाम लिख के बाद में तीन आंकड़ा डाला है। वो सारे कैसे है, सूक्ष्म अपर्याप्तों की जघन्य। पहला सूक्ष्म शब्द डाला था ना, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म सबके सूक्ष्म की बात है, सूक्ष्म अपर्याप्तों की जघन्य उगाना। अब उसके बाद चौथे कोटे में तेज लिखा है ना, वो सूक्ष्म तेज का एक पर्याप्तों की जघन्य, वह हमने अ निकाला था, अ निकाल दो उसमें से, चौथे कोठे में से अपर्याप्तों को नहीं, पर्याप्तों की वो अ निकाला था। पांचवे कोठे में तेज के अपर्याप्तों की उत्कृष्ट थी। नीचे छठे कोठे में 41 नंबर पर तेज के सूक्ष्म तेज बादर तेज वहां नौवे में चला गया। यहां सूक्ष्म की उत्कृष्ट है, सूक्ष्म सूक्ष्म लिए सब, और बादर के सात आठ नौ में चले गए, नौ में है, सॉरी, ये सूक्ष्म 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 की लिए हमने। हाँ, वहां का 45 नंबर है, हमने 37 दिया था। अच्छा किया देखा, यानी वो कितने बार असंख्यात गुणा हो गए, यानी उसके कितने भेद हो गए बीच में, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए। नौवे नंबर के कोठे में मैं छठी में सूक्ष्म पर्याप्तों की बात थी, यहाँ बादर की है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म की बात देख रहे थे, वो नहीं, सूक्ष्म और यहाँ बादर लेना है, यानी सूक्ष्म तेज का एक अपर्याप्त कोठा एक में था और नंबर तीन था उसका, और बादर तेज का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना हमने देखी, कोठा नौ में था और वहां का उसका नंबर था, वहां का उपयोग 45 था ना। हाँ, हमने 37 दिया था वो विशेष अधिक के लिए, यहाँ असंख्यात गुणा कवर करने के लिए 45 हो जाता है। तो हम क्या करना है, उत्कृष्ट अवगाहना में से जघन्य अवगाहना माइनस करना, कम करके शेष में जो बाकी रहा उसमें जघन्य अवगाहना के विकल्पों को लाने के लिए एक रूप का प्रक्षेप करके ऐड करना, क्योंकि हमको जघन्य को भी गिनना है और उत्कृष्ट को भी गिनना है, इसलिए उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, सामान्य तेज का एक राशि को, इसमें बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, इसलिए सामान्य तेज का एक राशि बताए, गुणित करने पर क्षेत्रोपण अग्नि का एक जीवों का प्रमाण होता है। यानी पहले में कैसे भेद निकाले, उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, और फिर क्या करना, सामान्य तेज का एक राशि को, यहाँ राशि लिए वहाँ उगाहना थी, राशि यानी संख्या, यानी अग्निकायकों की संख्या से गुणित करने पर क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीवों का प्रमाण होता है। उनका क्षेत्र यानी अवगाहना के विकल्प आए ना, अवगाहना के इतने विकल्प है और अग्निकायिक जीव इतने हैं, यानी एक जीव के लिए उसका कितना अलग क्षेत्र के इतने भेद हो गए, तो इतने जीवों के क्षेत्र की अपेक्षा भेद कितने हो जाएंगे, वो सारे क्षेत्र की अपेक्षा भेद और सारी अग्निकायिक जीवों की राशि, इसको क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीव कहा। यह परमावधि के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शलाका राशि, हमारी भाषा में यह परमावधि के भेद है, ख्याल में है ना, उसको नाम कुछ भी दे दो, ये क्या है, परमावधि ज्ञान के इतने अलग अलग भेद हो गए, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब जुदे जुदे हो गए। देशावधि के समान नहीं कि बहुत द्रव्य के भेद होने पर क्षेत्र का होता है, ऐसा यहाँ नहीं है, सब चेंज हो जाते हैं, अतः उसे पृथक स्थापित करना चाहिए, यानी ये शलाका राशि हमने अलग रखेंगे। पुनः समान संख्या वाले आवली के दो असंख्यात भागों को लेकर उन्हें भी पृथक स्थापित करना चाहिए। क्या कहा, एक शलाका राशि स्थापित की, वो क्या है, परमावधि के भेद है। फिर क्या किया, आवली का असंख्यात भाग दो बार लिखा, उसको भी अलग अलग स्थापित किया, आवली का असंख्यात भाग उसका प्रमाण भी वही लेना, वो भी लिखना एक जगह, एक जगह वो आवली का असंख्यात भाग, उतना ही दूसरे जगह आवली का असंख्यात भाग लिखा। उनमें से दाहिनी पार्श्व में स्थित राशि को प्रतिगुणकार व अवस्थित गुणकार, इस प्रकार दो संज्ञाएं हैं, उसी को प्रतिगुणकार कहेंगे या अवस्थित गुणकार कहें, जैसे हमने वो भागहार की संख्या वही ध्रुव भागहार कहा था, इसको अवस्थित गुणकार कहेंगे, यानी उतना उतना ही गुणा करना है, एक ही बात है। उनमें जो वह वाम पार्श्व में स्थित है उसके क्षेत्र काल गुणकार और अनवस्थित गुणकार, ये दो नाम है, आवली का संख्या भाग दोनों जगह लिखा था, तो एक को कहेंगे अवस्थित गुणकार और एक को कहेंगे अनवस्थित गुणकार, वो क्षेत्र काल गुणकार है। इस प्रकार स्थापित करके पश्चात देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर, यानी हमारी भाषा में ध्रुव भागार से भाग देने पर, अवस्थित विरलना क्या है, ध्रुव भागार की विरलन करना है, वो ध्रुवहार कहो या ध्रुव भागार कहो, उसमें अगर द्रव्य को डिवाइड करके देते हैं तो उसमें एक रूप धरित परमावधि का जघन्य द्रव्य होता है। देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण था उसको एक बार ध्रुवहार से भाग दे के जो संख्या आएगी तो जघन्य परमावधि का वो द्रव्य है, उतने सूक्ष्म स्कंध तक को परमावधि का जघन्य जानता है। देशावधि के उत्कृष्ट भाव को, अविभाव की बात है, उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर परमावधि का जघन्य भाव होता है। देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र कितना था, लोक था, लोक को अनवस्थित गुणकार से गुणित करने पर परमावधि का जघन्य क्षेत्र होता है। वो अनवस्थित, वो आवली का असंख्यात भाग गुणकार कहा, वो तो क्षेत्र इतना बढ़ गया, लोक मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, असंख्यात लोक हो गया। पुनः एक समय कम पल्य रूप देशावधि के उत्कृष्ट काल को उसी अनवस्थित गुणकार से गुणित करने पर परमावधि का जघन्य काल होता है, यानी काल में भी आवली का असंख्यात विभाग से गुणा करना। अब शलाकाओं में से एक रूप कम करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा हमने ध्रुवार से भाग दिया, भाव की अपेक्षा से हमने गुणा किया और क्षेत्रकाल की अपेक्षा से भी गुणा किया। पुनः परमावधि के जघन्य द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर, हमारी भाषा में ध्रुवार से भाग देने पर, उनमें एक खंड परमावधि का द्वितीय द्रव्य विकल्प होता है, क्योंकि द्रव्य सूक्ष्मता की ओर चलेगा। परमावधि के जघन्य भाव को उसके योग्य यानी उसके अपने योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर उसका ही द्वितीय विकल्प होता है। पुनः परमावधि के जघन्य क्षेत्र को प्रतिगुणकार से गुणित अधस्तन विकल्प के गुणकार से गुणित करने पर परमावधि के क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, प्रतिगुणकार यानी जिसको हमने अवस्थित गुणकार कहा, आवलिका संख्या अथवा भागता, अभी देशावधि के उत्कृष्ट से जिस गुणकार से गुणा करने पर परमावधि का जघन्य आया था, उस गुणकार को इस अवस्थित गुणकार से गुणा करो, यानी वो भी आवलिका संख्या अथवा भाग था, ये भी आवलिका संख्या अथवा, ये दोनों गुणकारों को आपस में गुणा करो, तो उस गुणकार से पहले विकल्प को गुणा करेंगे तो दूसरा विकल्प आएगा, यानी क्षेत्र इतना इतना बढ़ेगा ज्यादा। क्षेत्र और काल अनवस्थित बताया, अनवस्थित क्यों? द्रव्य सूक्ष्म की ओर जा रहा, उसको तो भागार से भाग देना और बाकियों को गुणा करना है, भावों को तो यथायोग्य असंख्यात से गुणा करना, और क्षेत्र और काल को अनवस्थित गुणकार इसलिए कहा। देखो हमने क्या क्या किया था, एक शला का ऊपर स्थापित की थी जो परमावधि के भेद है, इतने बार द्रव्य क्षेत्र काल भाव बढ़ेगा। पहले विकल्प में हमने देखा था लोक को असंख्यात से गुणा किया तो वो क्षेत्र आया था, लोक को असंख्यात गुणा किया तो असंख्यात लोक क्षेत्र आया था। काल भी पल्य का एक समय कम था, उसको भी अवली के असंख्यात से भाग गुणा करने पर काल आया था। भाव में असंख्यात गुणा किया और द्रव्य में ध्रुवार का भाग दिया, ये पहला विकल्प हुआ। दूसरे विकल्प के लिए क्या करना है, द्रव्य में वही ध्रुवार वही रखना है, भाव को यथायोग्य असंख्यात से गुणा करना, क्षेत्र और काल में क्या करना, तो कहते वो तो असंख्यात गुणा होता है परंतु ये असंख्यात गुणा का प्रमाण क्या है, तो पहले इसके पहले से जितने असंख्यात गुणा करके ये बात आई थी उसको अवस्थित गुणकार से गुणा करो, पूर्व गुणकार को इस गुणकार से गुणा करो और उस गुणकार में यहाँ गुणा करेंगे तो दूसरा विकल्प आएगा। फिर से पढ़ती हूँ इसको मैं, नीचे से दूसरी लाइन, पुनः परमावधि के जघन्य क्षेत्र को प्रतिगुणकार से गुणित अधस्तन विकल्प से गुणकार विकल्प के गुणकार से गुणित, यानी वो प्रतिगुणकार और अधस्तन विकल्प का गुणकार दोनों का आपस में गुणा करना, करने पर परमावधि के क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है, ये डबल गुणकार हो गया उसका। इसी गुणकार से परमावधि के जघन्य काल को गुणित करने पर काल का द्वितीय विकल्प होता है, यानी क्षेत्र और काल में गुणकार वही होता है पर गुणकार आगे आगे के विकल्प में गुणित प्रमाण में गुणकार बढ़ेगा, जिस संख्या से गुणा करना है वो गुणकार की संख्या गुणित प्रमाण में बढ़ेगी। शलाकाओं में से एक रूप कम करना, क्योंकि दूसरी बार हमने उसका विकल्प निकाला। पुनः द्वितीय विकल्प रूप जघन्य द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर यानी ध्रुवहार से भाग देने पर उनमें एक खंड तृतीय विकल्प रूप द्रव्य होता है। द्वितीय विकल्प रूप भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर तृतीय विकल्प रूप भाव होता है। अब क्षेत्र और काल में क्या समझना है उसकी थोड़ी विशेषता है, अवस्थित गुणकार से अवस्थित गुणकार से गुणित द्वितीय विकल्प के गुणकार से द्वितीय विकल्पभूत क्षेत्र व काल को गुणित करने पर तृतीय विकल्प रूप क्षेत्र व भाव होते हैं। अपनी भाषा में ये जो विकल्प है दूसरा तीसरा चौथा, उसमें क्या करना है, वो पूर्व गुणकार को आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करेंगे तो पहले और दूसरे में यह गुणकार आएगा। मान लेते ना यहाँ गुणकार नंबर एक हम लिखेंगे, दो और तीन के बीच में क्या करना, ये गुणकार को आवली के असंख्यात विभाग से गुणकरण, तो ये गुणकार दो आएगा। आगे को इस दो गुणकार क्या था, वो पहले के गुणकारों की मल्टीप्लिकेशन थी, इसको और आवली के भाग से असंख्यात विभाग से गुणा करना तो ये गुणकार तीन, यानी ये गुणकार अवस्थित नहीं है, जिस संख्या से गुणा करना वो भी गुणित प्रमाण में होती चली जाती। द्रव्य में तो फिक्स एक ही भागहार है, भाव में यथायोग्य असंख्यात गुणा होता है, परंतु द्रव्य और क्षेत्र और काल का जो गुणकार है, पूर्व गुणकार को अवस्थित गुणकार से गुणित करते चले जाओ, यानी यहाँ गुणकार जो है एक पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो अवली के असंख्यात पे भाग गुणा होता चला जाता है, गुणित प्रमाण में, गुणकार भी गुणित प्रमाण में होता चला जाता है, यानी प्रत्येक गुणकार असंख्यात गुणा होगा। कितना असंख्यात लोक होगा, क्योंकि एक बार गुणा करने पर ही असंख्यात लोक हुआ, दूसरी बार अवली का असंख्यात तो भाग वाला अवस्थित गुणकार से गुणा करना, और वो जो गुणकार आएगा उससे गुणा करना। भाग देना ही नहीं, भाग तो द्रव्य में देना है, क्षेत्र और काल में डायरेक्ट गुणा करना, पर उसका गुणकार कौन सा, पूर्व गुणकार मल्टीप्लाइड बाय अवली का असंख्यात का भाग। अभी आते हैं 46 पेज पर, यानी इसी गुणकार से परमावधि के जघन्य हम पढ़ गए, इसको काल को गुणित करने पर काल का द्वितीय विकल्प होता है, यानी क्षेत्र का और काल का गुणकार सेम है, पर वो पूर्व पूर्व गुणकारों से गुणित प्रमाण में है। शलाकाओं में से एक रूप कम करना चाहिए। पुनः द्वितीय विकल्प रूप जघन्य द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर उनमें एक खंड तृतीय विकल्प रूप द्रव्य होता है। द्वितीय विकल्प रूप भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर तृतीय विकल्प रूप भाव होता है। अवस्थित गुणकार से गुणित द्वितीय विकल्प के गुणकार से द्वितीय विकल्प रूप क्षेत्र व काल को गुणित करने पर तृतीय विकल्प रूप क्षेत्र व काल होते हैं। शलाकाओं में से अन्य एक रूप कम करना चाहिए। चतुर्थ, पंचम, छठे और सातवें आदि विकल्पों को इसी प्रकार ही ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी विशेषता नहीं है, यानी आगे आगे का जो पीछे का गुणकार है उसको और गुणित करो, वो वहाँ का गुणकार होगा। तीसरे का जो गुणकार है उसको अवली के असंख्यात विभाग से गुणा करो तो चौथे का गुणकार होगा, वो चौथे का जो आया है उसको और अवली के असंख्यात विभाग से गुणा करो तो आगे वाले का गुणकार हो जाएगा। ऐसे शलाका जितने भेद है वहां तक ऐसे ही चलेगा। अभी शंकाकार पूछते, इस प्रकार जाने पर अनवस्थित गुणकार किस स्थान में घनलोक मात्र होता है? इस प्रकार पूछने पर उत्तर कहते हैं, आवली के असंख्यात वे भाग के अर्धच्छेदों से लोक के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करके लब्ध मात्र अध्वान जाने पर अनवस्थित गुणकार लोक मात्र होता है, क्योंकि विरलन राशि मात्र अवस्थित गुणकारों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि वहां पाई जाती, जो अभी हमने पहले देखा था 256 डिवाइडेड बाय 4, तो 256 के अर्धच्छेद डिवाइडेड बाय 4 के अर्धच्छेद, 8 बाय 2 ने 4 हो गए, तो 4 बार 4 4 लिखो आपस में गुणा करो तो वो उसका प्रमाण आता है 256 प्रमाण। ऐसे यहाँ करना, लोक के अर्धच्छेद डिवाइडेड बाय अवली के असंख्यात भाग के अर्धच्छेद, जो प्रमाण आएगा उसका विरलन करो और उसमें अवली का असंख्यात भाग दे दो, इतने बार अवली के असंख्यात भाग को गुणा करेंगे आपस में तो लोक संख्या आएगी, यही कहते हैं। तो कितने स्थान जाने पर लोक आएगा, घन लोक है ना लोक, तो कहते कि ये तो अर्धच्छेदों से उसको अर्धच्छेद को अपवर्तित करो और इतने स्थान जाने पर अनवस्थित गुणकार लोक मात्र होता है, यानी जो पहला स्टार्टिंग में जो अवली का असंख्यात विभाग को इतनी बार अवली के असंख्यात विभाग से गुणा करते 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 वो गुणकार भी लोक मात्र हो जाता है। वहां से लेकर ऊपर सर्वत्र अनवस्थित गुणकार असंख्यात लोक मात्र है, यानी अनवस्थित गुणकार भी असंख्यात लोक है उस, क्योंकि आगे आगे अवली के असंख्यात विभाग से गुणा करेंगे, पहले अनवस्थित गुणकार लोक हुआ अब उसको अवली के असंख्यात विभाग से गुणा करो तो असंख्यात लोक हो जाएंगे, उसको और अवली के असंख्यात विभाग से गुणा करो तो असंख्यात लोक हो जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक विकल्प के प्रति वह अवस्थित गुणकार से गुणिज्यमान है, इन्हें गुणा करने योग्य है। इस प्रकार परमावधि के द्विचरम विकल्प तक ले जाना चाहिए। अब लास्ट वाला विकल्प बताएंगे। अब अंतिम विकल्प को कहते हैं, परमावधि के द्विचरम द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर अंतिम द्रव्य विकल्प होता है। यानी वो द्विचरम को ध्रुवभार से भाग देने पर अंतिम विकल्प आता है। द्विचरम भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर परमावधि का अंतिम भाव आता है। यानी भाव की अपेक्षा उसका भेद है। परमावधि के असंख्यात लोकमात्र द्विचरम अनवस्थित गुणकार को अन्य आवली के असंख्यात विभाग से गुणित, उस गुणित राशि से द्विचरम क्षेत्र और काल को गुणित करने पर परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल होता है। सबके लिए असंख्यात लोक असंख्य ऐसा ही कथन होगा। शलाकाओं में से एक रूप कम करने पर सब शलाकाएं यहां समाप्त हो जाती, क्योंकि परमावधि के सारे भेदों को हमने ले लिया। क्षेत्रोपम अग्नि जीवों से देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की खंडन और गुणन रूप बार शलाकाओं से साधे गए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को उत्कृष्ट परमावधि जानता है। यह सिद्ध हुआ, यानी उसकी शलाका कितने की ली, तो हमने क्षेत्रोपम जीव लिया, यानी उसकी अवगाहना के भेद मल्टीप्लाइड बाय उसकी राशि, उसको क्षेत्रोपम अग्नि कहा था। यानी इसका ये पूरे वाक्य का अर्थ देखो, देखो क्षेत्रोपम अग्नि जीवों से, क्षेत्रोपम अग्नि जीव यानी अवगाहना के भेद मल्टीप्लाइड बाय अग्नि राशि, यानी उतने ही परमावधि के भेद। अब ये जो संख्या है उससे देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव की खंडन और गुणन रूप बार शलाका, इसका अर्थ क्या है? नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ ऐसा है, इतने बार हमको या तो गुणा करना है या तो भाग देना है। द्रव्य की अपेक्षा भाग देते जाएंगे, और वो तो क्षेत्र और काल के लिए और भाव के लिए गुणा करेंगे, इतनी बार किया क्योंकि सभी के इतने भेद हुए, ये उसका अर्थ होता है। ये खंडन जो है वो द्रव्य के लिए, हाँ खंडन है वो ध्रुवा से भाग देते वो द्रव्य निकालने के लिए, और गुणन रूप बार के लिए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव उससे गुणन करते गए, इतने बार शलाकाओं से साधे गए। नहीं नहीं नहीं, वो अनवस्थित गुणकार होता गया था, अनवस्थित हर बार गुणकार बढ़ा ना, गुणित प्रमाण गुणकार भी गुणित प्रमाण में हुआ, संख्या भाग गुणा है, हाँ वो अनवस्थित गुणकार है, वही वही गुणकार नहीं रहा, गुणकार भी बढ़ता गया, पर कितने बार ऐसे गुणकार बढ़ते हुए गुणकार से कितने बार गुणा किया, तो जो शलाका राशि उतनी बार गुणा किया, इसको कहते इतनी बार शलाकाओं से साधे गए, जो हमने मिला है ना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को उत्कृष्ट परमावधि जानता है, यह सिद्ध हुआ। इन्हें डायरेक्ट देशावधि के उत्कृष्ट से सारे अभी जितने बार गुणा करके जो बात आई थी डायरेक्ट हमको निकालना है। जैसे हमने पांच बार भाग दिया और पांच बार गुणा किया, तो डायरेक्ट पांच बार का आपस में गुणा करो और डायरेक्ट उससे गुणा करो तो हमें लास्ट वाला मिलेगा कि नहीं? हमने पहले दो गुणा किया, बाद में चार गुणा किया, बाद में आठ गुणा किया, तो डायरेक्ट दो गुणा चार गुणा और आठ गुणा उसका आपस में गुणा करो तो मूल भेद को उतने गुणा डायरेक्ट करो तो उत्कृष्ट देशावधि से हमको डायरेक्ट उत्कृष्ट परमावधि का प्रमाण आ जाएगा, ये यहाँ कहना चाहते हैं। ख्याल में आते ना, किसी संख्या को पहले हमने दो गुणा किया, फिर चार गुणा किया, फिर 8 गुणा किया तो टोटल कितने गुणा किया, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 8 64, तो डायरेक्ट 64 गुणा करने से वो बात आएगी, यही यहाँ कहना चाहते हैं। जितने बार में जो कुछ गुणाकार है और जो कुछ खंडन किया है तो डायरेक्ट उससे उसको खंडित करो या गुणा करो तो हमको डायरेक्ट उत्कृष्ट परमावधि की बात मिल जाएगी। इसीलिए देशावधि को पूर्व में नमस्कार किया, क्योंकि देशावधि के आधार से हमने ये निकाला है। पहले नमस्कार क्यों किया ये जानने के लिए इतने सब चर्चा हुई। अवस्थित गुणकार से किसको गुणा किया, पहले वाले गुणकार को, वही तो कहते हैं पहले गुणकार मल्टीप्लाइड बाय अवस्थित गुणकार इज इक्वल टू द्वितीय गुणकार, द्वितीय गुणकार गुणित अवस्थित गुणकार इज इक्वल टू तृतीय गुणकार, तृतीय गुणकार इंटू अवस्थित गुणकार इज इक्वल टू, हाँ अवस्थित गुणकार से गुण वो नया गुण भाग है, परंतु वो नया गुणकार निकालने के लिए वो अवस्थित गुणकार है। यानी पहले गुणकार से दूसरा गुणकार इतना गुणा है, दूसरे से तीसरा गुणकार उतने गुणा है, इस तरह से आगे आगे वाले गुणकार भी गुणित प्रमाण में है, इतना ही कहना चाहते हैं। उसको अनवस्थित कहा, अनवस्थित का प्रमाण निकालने के लिए वो अवस्थित गुणकार काम आ रहा है, डायरेक्ट अवस्थित गुणकार रूप से गुणित प्रमाण में हुआ ही नहीं कभी। अब कहते हैं नमो सव्वो हुई जिनानम, सर्वावधि जिनों को नमस्कार हो। विश्व और कृष्ण सर्व ये समानार्थक शब्द है, ये सर्व नहीं चाहिए, सर्व पहले चाहिए, ऊपर लिखा ना सर्वम विश्वम और कृष्णम, ये तीनों ही शब्द एकार्थी हैं। तो विश्व कृष्ण और ये सर्व पहले शब्द चाहिए, और सर्व ये समानार्थक शब्द है। सर्व है मर्यादा जिस ज्ञान की, वह सर्वावधि है। यहाँ सर्व शब्द समस्त द्रव्य का वाचक नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिसके परे अन्य द्रव्य न हो उसके अवधिपना नहीं बनता। क्या कहना चाहते हैं, सभी द्रव्यों को ऐसा उसका नहीं समझना अर्थ, परंतु सर्व कहने से सर्व रूपी द्रव्य समझना चाहिए। किंतु सर्व शब्द के शब्द सबके एक देश रूप रूपी द्रव्य में वर्तमान ग्रहण करना चाहिए, इसलिए सर्व रूपगत है अवधि जिसकी, इस प्रकार संबंध करना चाहिए। अथवा जो आकुंचन और विसर्पणादिकों को प्राप्त हो वह पुद्गल द्रव्य सर्व है, वही जिसकी मर्यादा है वह सर्वावधि है। पेज नंबर 48। आकुंचन और विसर्पण, आकुंचन और प्रसरण, विसर्पण, सर्पण यानी वो कहते अवसर्पिणी उत्सर्पिणी विसर्पण यानी वो फैलना, हाँ बढ़ना, हाँ। 48 पेज पर शंका पूछते हैं, चूंकि सर्वावधि जिन समस्त संसारी जीव और पुद्गल द्रव्य को जानते हैं, अतः परमावधि जिनों की अपेक्षा महान होने से उन्हें ही पूर्व में नमस्कार क्यों नहीं किया। समाधान, नहीं, क्योंकि सर्वावधि के महत्व का ज्ञान करने रूप गुण से सर्वावधि से परमावधि के महत्व को देखकर उससे पहले नमस्कार किया है। यानी सर्वावधि का जो लिमिट जानने के लिए परमावधि को पहले बताया और बाद में उसके आधार से हम उसके ऊपर की बात बता सकते हैं। अभी आगे का जो है वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा है ना, आधा अधूरा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं